नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को 42 विधायकों के साथ एक वीडियो जारी कर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव और भी बढ़ा दिया है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत भी बागी विधायकों के तेवर के आगे नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। राउत ने आगे कहा कि अगर सारे विधायक चाहते हैं तो शिवसेना महाअघाड़ी सरकार से अलग हो जाएगी, लेकिन सारे बागी विधायकों को मुंबई आकर उनसे और सीएम उद्धव ठाकरे से बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि बागी विधायक गुवाहाटी से संदेश बंद करें और मुंबई आकर बात करें। संजय राउत ने कहा, विधायकों को गुवाहाटी से संवाद नहीं करना चाहिए, वे वापस मुंबई आए और सीएम से इन सब पर चर्चा करें। अगर सभी विधायकों की इच्छा है तो हम एमवीए से बाहर निकलने पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यहां आकर सीएम से चर्चा करनी होगी। बुधवार को सीएम उद्धव ठाकरे ने भी बागी विधायकों को संदेश दिया था और कहा था कि अगर सभी विधायक चाहते हैं तो वे सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा था कि वे सामने आकर बात करें। इससे पहले संजय राउत ने कहा कि ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ने वाले बाला साहेब के सच्चे भक्त नहीं हैं। शिवसेना के बागी विधायक संजय शिरसाट ने मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर दावा किया कि शिवसेना विधायक 2.5 साल से अपमान का सामना कर रहे थे, जिसके चलते मंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कदम उठाया। पत्र में शिरसाट ने महाविकास अघाड़ी सरकार में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को असल विरोधी बताने का दावा किया कि पार्टी विधायकों की मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं है, लेकिन इन दोनों दलों पर सारा ध्यान दिया जाता है। औरंगाबाद से विधायक सिरसाट ने 22 जून को लिखे पत्र में दावा किया कि शिवसेना के सत्ता में होने और उसका अपना मुख्यमंत्री होने के बावजूद ठाकरे के आसपास की मंडली ने उन्हें कभी भी वर्षा तक पहुंचने नहीं दिया। वर्षा मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय जाने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री कभी नहीं आए। पत्र को शिंदे ने अपने ट्विटर पेज पर पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि ये शिवसेना के विधायकों की भावनाएं हैं। अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप से 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। भूकंप से सैकड़ों मकान तबाह हो गए हैं, वहीं 800 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए एजेंसियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। लोगों को बचाने और घायलों को अस्पताल में पहुंचाने का काम जारी है। तालिबान सरकार ने यूएन समेत दुनिया के सभी देशों से मदद की गुहार की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते दिन आए भूकंप ने घनी आबादी वाले अफगानिस्तान के कई इलाकों और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को हिलाकर रख दिया। भूकंप दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान के खोस्त शहर से लगभग 44 किलोमीटर दूर आया। इसका केंद्र धरती में 51 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के आने के बाद हर तरफ मौत दिखने लगी। आलम यह है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी ये पता नहीं लग पा रहा है कि कहां ज्यादा नुकसान हुआ। लोग अपनों को मलबे में तलाश रहे हैं। तालिबान सरकार ने 1000 से अधिक लोगों के मौत की पुष्टि की। मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि मलबा पूरी तरह से हटा नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शाह ने खुद एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। उन्होंने कहा, राज्य के राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी से भेंट कर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दी। उनके नाम की घोषणा से ही जनजातीय समाज अत्यंत गौरव की अनुभूति कर रहा है। मुझे विश्वास है कि उनके प्रशासनिक व सार्वजनिक अनुभव का लाभ पूरे देश को मिलेगा। राज्य की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मुर्मू आज दिल्ली पहुंची। शाह से मुलाकात से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके प्रस्तावकों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। असम में बाढ़ की स्थिति बृहस्पतिवार को भी गंभीर बनी रही। सैलाब से 54.5 लाख से ज्यादा लोग अभी प्रभावित हैं तथा 12 और लोगों की मौत हुई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में मई के मध्य में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या अब 101 हो गई। इस बीच बाढ़ की वजह से राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां एक हफ्ते पहले ही घोषित कर दी गईं। शिक्षा विभाग के सचिव भरत भूषण देव चौधरी ने एक अधिसूचना में कहा, छुट्टियां 25 जून से 25 जुलाई तक होंगी। राज्य के कुल 36 में से 32 जिलों का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। अधिकांश प्रभावित जिलों में ब्रह्मपुत्र और बरांक नदियां तथा उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं। हालांकि कुछ जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि असम के 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में NDRF ने 14,500 से अधिक लोगों को बचाया है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।